मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 21 मई 2018 है और आज के इस afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत भी करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत अंश पेश करने जा रहा हूं और ये खूबसूरत अंश है चार्ली चैपलिन के जीवन से संबंधित। और चार्ली चैपलिन का नाम आप लोगों के लिए अननोन नेम नहीं है, आप बहुत अच्छे से इनके नाम को जानते हैं, और अगर नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं, अभी जब आप उस अंश को सुनेंगे तो डेफिनेटली एक तस्वीर आपके दिमाग में उभरेगी और शायद आप उन्हें समझ जाएं कि कौन है चार्ली चैपलिन। इसका अगर मैं शीर्षक अपनी ओर से देने की कोशिश करूं या देने की यूं कह लीजिए कि गुस्ताखी करूं तो लाइफ मैनेजमेंट के लिहाज से मैं इस अंश का शीर्षक देना चाहूंगा मित्रों, अज्ञात की यात्रा, जर्नी टुवर्ड्स अननोन, या कह लीजिए कि अज्ञात की ओर की यात्रा। हम यात्रा कर रहे हैं लेकिन नहीं जानते कि कहां जा रहे हैं, पता नहीं पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, पहुंचेंगे भी तो कहां पहुंचेंगे, कुछ नहीं जानते लेकिन हम यात्रा कर रहे हैं, लेकिन पहुंच भी जाते हैं। बस केवल इस संदर्भ को अपने दिमाग में रखिएगा, तब आप इस अंश को सही मायने में आत्मसात कर पाएंगे और इसमें से कोई तथ्य भी शायद आप अपने लिए निकाल सकें। और मुझे लगता है कि इस तरह का जो ज्ञान होता है या इस तरह की जो सोच होती है, विचार होता है कि हम सब यात्रा कर रहे हैं, बस यात्रा खत्म नहीं होनी चाहिए, यात्रा जारी रहनी चाहिए, वो अज्ञात की भी है तो कोई नहीं, लेट अस सी क्या होता है, देखते हैं कि क्या होता है। बस यह है कि यात्रा सोची समझी हो, एक डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो हम विचार करके यात्रा करते हैं, ऐसा नहीं हो जाता कि एक गोल सर्किल बना लिया और उसमें हम यात्रा करनी शुरू कर दी और वहीं वहीं घूम रहे हैं, वैसी तो होती नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पर मैंने इसे नाम देना पसंद किया अज्ञात की यात्रा। आइए पहले हम उस अंश को देख लेते हैं, फिर अगर वक्त बचा तो उस पर बात करना ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि तब ज्यादा आप अच्छे तरीके से उसे रिलेट कर पाएंगे। मित्रों, एक फिल्म आई थी और उसका नाम था किड ऑटो रेसेस एट वेनिस। ये फिल्म थी और इस फिल्म की शूटिंग की ही ये कहानी है। मैं आपको अंश पढ़ करके सुना रहा हूं, अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, अंश पढ़ करके मैं इसलिए सुना रहा हूं कि इसके सुनने का अपना एक अलग आनंद है। जिस तरीके से ये लिखा गया है, जिस रसीले तरीके से, जिस स्टाइल से, वह अंदर तक उतर जाता है। देखिए, बात कहने का अंदाज भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि आप क्या बात कहने जा रहे हैं, यह महत्वपूर्ण होता है। मित्रों, इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी, फिल्म निर्माता थे इसके मैक सीनेट। फिल्म की शूटिंग चल रही थी, फिल्म निर्माता मैक सीनेट चीखा, कुछ मजा नहीं आ रहा है, और चार्ली चैपलिन से मुखातिब होकर बोला, हमें ठहाकों की जरूरत है, तुरंत कोई कॉमिक मेकअप करके आओ, कुछ भी पहनो चलेगा। अब चुनौती चार्ली के सामने थी। सीनेट ने पहली बार चार्ली से अपनी तरफ से कुछ काम करने के लिए कहा था। बहुत जरूरी था कि उसे इम्प्रेस किया जाए, क्योंकि अगर इम्प्रेस नहीं कर सका तो चार्ली हमेशा हमेशा के लिए फिल्म से बाहर हो सकते थे। ऐसे में चार्लिंग ड्रेसिंग रूम की ओर लपका, क्या मेकअप किया जाए। वह यहां वहां नजरें दौड़ाने लगा। पास ही किसी मोटे आदमी की बैगी टाइप की ढीली ढाली पतलून पड़ी हुई थी। उसने आओ देखा न ताओ उसे पहन लिया। अब यह पतलून संभाले नहीं संभली तो एक बुरा सा बेल्ट बांध लिया। उसने सोचा, ढीली पतलून के साथ टाइट जैकेट या कोट डाला जाए। उसने एक तंग कोट ढूंढ निकाला। इस तरह वह अब हर चीज में विलोम का अनुपात लगाना चाहता था। ढीली पैंट तो टाइट कोट, इसी प्रकार जूता लदड़ फदड़ और खूब बड़ा पहना और उसके विलोम अनुपात के लिए एक छोटी सी टोपी खोज निकाली। उसने अपनी उम्र के बारे में सोचा, उसे बूढ़ा दिखना चाहिए या जवान। फैसला किया कि नहीं, बूढ़ा, यह उसके अभी की उम्र के विलोम में सटीक बैठेगा। उसने टूथ ब्रश जैसी मूछें लगा ली। खड़ा हुआ तो उसे थोड़ा अधूरापन लगा। उसकी निगाहों ने फिर ड्रेसिंग रूम की तलाशी ली। पतली सी एक छड़ी ने उसे न्योता दिया। उसने झट से उस छड़ी को भी लपक लिया। अब चार्ली खुद को भी पहचान नहीं पा रहा था। बैठे बैठे उसने एक विचित्र व्यक्ति को जन्म दे दिया था। छड़ी लहराते और कमर लचकाते लटपटाते कदमों से जब वह बाहर आया तो दुनिया उसकी दीवानी हो गई। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। दुनिया ने चार्ली के विराट रूप के दर्शन कर लिए थे। मित्रों, ये उस पुस्तक का अंश है। डाई, चार्ली चैपलिन के बारे में अगर आप थोड़ा सा भी जानते हैं या चार्ली चैपलिन का कोई फोटोग्राफ आपने देखा हो तो आप देखते हैं कि एक व्यक्ति जो इसी स्वरूप में है, वो अक्सर चार्ली चैपलिन को इसी रूप में दिखाया जाता है। और ये कहा जाता है कि हमारे यहां जो राज कपूर साहब थे, उन्होंने फिर चार्ली चैपलिन को कहीं न कहीं आदर्श मान करके अनुकरण करने की उनकी कोशिश की। उन्होंने भी अपना जो हुलिया बनाया वो काफी कुछ चार्ली चैपलिन से मिलता जुलता ही था। और चार्ली चैपलिन छोटे मोटे नाम नहीं है मित्रों, वो दुनिया के महानतम फिल्मकारों में से हैं, महानतम फिल्मकारों। मैंने कई फिल्में चार्ली चैपलिन की देखी हैं और जीवनी तो पढ़ी ही है और दो तीन राइटर्स के द्वारा लिखी गई जीवनियां पढ़ी हैं चार्ली चैपलिन की। अद्भुत व्यक्तित्व। और मैं आप सबसे भी सजेस्ट करूंगा कि यदि संभव हो सके तो आप सब चार्ली चैपलिन की जीवनी पढ़िए। बहुत ही प्रेरणादायक जीवनी है, बहुत ही प्रेरणास्पद। और अगर बहुत खूबसूरत तरीके से लिखी हुई आपको किताब मिल गई तो फिर पढ़ने का मजा तो फिर एक अलग ही है। अब आप देखिए कि चार्ली चैपलिन क्या कर रहे हैं। उसे कुछ नहीं मालूम है कि इसका क्या होगा। वो केवल जो भी चीज उसे दिखाई दे रही है उसको वो पहनता चला जा रहा है, ओढ़ता चला जा रहा है, अपने शरीर पर डालता चला जा रहा है। लेकिन उसके दिमाग में एक थॉट है। देखिए, एक थॉट है, हमें इस थॉट को नहीं भूलना चाहिए। वो थॉट ये है कि लोगों को हंसाना है, क्योंकि सीनेट ने कहा है कि हमें ठहाकों की जरूरत है। और उसके सामने चुनौती ये है, चैलेंज ये है कि अगर वह अपनी वेशभूषा से जो दर्शक आए हुए हैं उनके ठहाके पैदा नहीं करा सका तो हमेशा हमेशा के लिए फिल्मों से निकाल दिया जाएगा। और कल्पना करके देखिए कि अगर सही में उस समय चार्ली चैपलिन फेल हो गया होता, दर्शकों को उसकी वह चेहरा मोहरा उसका देख करके मजा नहीं आया होता तो आज चार्ली चैपलिन कहां होते, हम खो चुके होते चार्ली चैपलिन को। तो वो थॉट तो उसके दिमाग में था, वो चैलेंज उसके दिमाग में था। फिर इस चैलेंज को एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए उसने किस प्रिंसिपल का सहारा लिया, किस सिद्धांत का सहारा लिया। वो सिद्धांत था विलोम का अनुपात, यानी कि एक दूसरे के चीजें विरोधी हों। अगर एक कोई ढीला ढाला है तो कोई दूसरा बहुत कड़ा है, कोई एक बड़ा है तो दूसरा कोई बहुत छोटा है, कोई बहुत खूबसूरत है तो दूसरा कोई बहुत बदसूरत है। ये विलोम है, एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी। और फिर कहा कि इस विलोम का अनुपात, मतलब विलोम के भी अपने अनुपात होते हैं, उस अनुपात को ध्यान में रखते हुए उसने फटाफट चीजें अपने शरीर पर डालनी शुरू कर दी और उससे एक नए चार्ली का जन्म हो गया, नए चार्ली का जन्म हो गया। मैंने इस घटना को अज्ञात की यात्रा मित्रों इसलिए कहा है क्योंकि याद रखिए कि सफल होने से पहले किसी को मालूम नहीं रहता है कि वो सफल होगा या नहीं होगा। सामान्यतया और खासकर तब तो बिल्कुल भी मालूम नहीं होता जबकि जो सफलता का पैमाना है वो बहुत बड़ा हो। देखिए, छोटे मोटे पैमाने के बारे में तो हमें अंदाज हो ही जाता है कि अगर हमने फसल लगाई है तो फसल होगी, अगर हमने पढ़ाई की है तो हम पास हो ही जाएंगे। मैं इन सफलताओं की बात नहीं कर रहा हूं, इसको तो हम अनुमानित कर सकते हैं, लेकिन मैं उस सफलता की बात कर रहा हूं जो महानतम सफलताएं कहलाती है, जो इतिहास में दर्ज हो जाती है। तो इनफैक्ट कोई सफल होने के लिए नहीं करता है, याद रखिए कि वो एक चुनौती को अपने सामने पाता है और बस उस चुनौती को वो चुनौती देता है, वो चुनौती उसे चुनौती दे रहा है। चार्ली चैपलिन को एक ने चैलेंज किया तो अब चार्ली चैपलिन उसे चैलेंज कर रहा है कि ठीक है मैं देखता हूं। और ऐसे में पता नहीं कितने गुमनाम भी हो जाते हैं, वी डोंट नो, हम उनके नाम नहीं जानते, लेकिन क्या कीजिएगा, प्रकृति ऐसी ही है, जीवन भी ऐसा ही है। हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि अपने दिमाग में एक विचार को लाकर उस विचार को के बारे में सोच विचार कर, याद रखिए विचारों के बारे में भी विचार कीजिए और फिर अपने एक्शन में आ जाए। दैट्स ऑल, रेस्ट इज टू द सोसाइटी, द हिस्ट्री, टू टाइम। बाकी चीजों का फैसला करना समाज के हाथ में है, इतिहास के हाथ में है, वक्त के हाथ में है। दूसरे की चीज को हम अपने हाथों में क्यों लें। तो मित्रों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। अब आप सबकी इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।